से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ ओ ओम किस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन आदि देव प्रजा पिता श्री बोलते ध्वनियों ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओम ओम मोहनी सूरत मोहनी मूरत ज्ञान के मोती भव्य मुख पर चंद्रमासी चमकती ज्योति दिव्य दर्शन दिव्य वाणी बोलते मधुर वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ जब घटा छाई तब विभूति आप जैसी धरती पे आई एक तार में बंध के सारे बोलते ध्वनियों ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ ओ ओ
शांति ओम शांति। सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग। आज सतगुरु बाबा ने हम बच्चों को बहुत सुंदर टाइटल दिया है। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे सब नंस हो। नंस साकार बाबा के समय यहाँ माउंट आबू में बहुत नंस घूमती थी, और वो भी सफेद साड़ी पहनती थी। तो कई लोग हम लोगों को समझते थे ये भी एक क्रिश्चियन नंस है, लेकिन फिर उनको हम बताते थे कि नहीं, हम तो देवताओं को मानते हैं, तो इसीलिए फर्क पड़ गया। लेकिन बाबा कहते, तुम सचमुच सच्चे सच्चे नंस हो, क्योंकि नन शब्द का अर्थ है नन बट वन। वो तो केवल क्राइस्ट को याद करते हैं, फिर गॉड भी कहते हैं, तो गॉड और सन, बाप और बेटा, गॉड को पिता कहते हैं और क्राइस्ट को सन कहते हैं। क्राइस्ट ने कहा, मैं उस पिता का बेटा हूं, तो वो तो दो को याद करते हैं। अब तुम बच्चे केवल एक को याद करते हो, इसीलिए नन बट वन। तो शिव बाबा के सिवाय और किसी को याद नहीं करना है, तो सच्चे नंस हो। दूसरा, बाबा कहे, बाबा क्यों आए हैं? ये दुनिया बेचैनों की दुनिया है, यहाँ सारे बेचैन है, और जो बेचैन होते माना दुख अशांति में है। तो मैं आया हूँ चैन की दुनिया में ले जाने, सुख शांति की दुनिया में ले जाने। तो कितना बड़ा कार्य भगवान आकर करते हैं, हम सबको उस चैन की दुनिया में ले जाते। तो चैन की दुनिया कौन सी है? सतयुग तो है ही, लेकिन परम धाम भी तो चैन की दुनिया है ना, वहां आत्मा का कोई पार्ट ही नहीं है। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को लेने आए हैं। तो हम सभी कौन हो गई? हाँ, कौन हो बहने? सच्ची सच्ची नंस। एक बाबा, दूसरा न कोई, उनकी ही लगन में रहने वाली। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 20/8/2026 है। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें इस पाप की दुनिया से निकाल चैन की दुनिया में ले जाने। बाप द्वारा तुम्हें सुख शांति की दो सौगातें मिलती है। सुख शांति हमारे लिए बाबा की ये दो सौगातें हैं। प्रश्न है, सारी दुनिया में सच्ची सच्ची नंस तुम हो। सच्ची नंस किसे कहेंगे? किसे कहेंगे? उत्तर है, सच्ची नंस वो जिनकी बुद्धि में एक की याद हो, बस एक की याद, अर्थात नन बट वन, एक के सिवाय और कोई नहीं, नन बट वन। वे अपने को भल नंस कहलाती है, लेकिन उनकी बुद्धि में सिर्फ एक क्राइस्ट की याद नहीं, क्राइस्ट को भी गॉड का बच्चा कहेंगे। तो उनकी बुद्धि में दो है, क्राइस्ट तो गॉड का बच्चा है, तो इसीलिए बाप भी है गॉड भी है, तो उसका बच्चा भी बुद्धि में है, क्राइस्ट भी बुद्धि में है। और तुम्हारी बुद्धि में एक बाप है, इसलिए तुम सच्ची सच्ची नंस हो। तुम्हें बाप का फरमान है कि कि पवित्र रहना है, वो नंस भी पवित्र रहती है। या माउंट आबू में 3 स्कूल्स थे जो कॉन्वेंट स्कूल्स थे, और भी होंगे, एक सेंट जोसेफ स्कूल, एक सेंट मेरी स्कूल और तीसरा सोफिया स्कूल, वो लड़कियों का स्कूल। बाकी 2 स्कूल थे, तो वहां पर फादर्स होते थे, फादर्स क्रिश्चियन स्कूल्स थे, कॉन्वेंट स्कूल्स थे, तो फादर होते थे, लंबा लंबा चोगा पहनते थे और यहाँ क्रॉस होता था। और फिर नंस होती थी, वो सोफिया स्कूल में होती थी, वो सफेद साड़ी पहनती थी, आजकल तो वो रंगीन भी पहनते हैं और वो भी चोगा ही पहनते हैं लंबा लंबा। तो कई लोग हम लोगों से उनकी कंपैरिजन करते थे, सोचते थे ये भी क्रिश्चियन है क्योंकि हम भी सफेद साड़ी पहनते हैं। लेकिन बाबा उनकी बहुत महिमा करते थे। किस रूप में? वो एकदम साइलेंस में जाती थी, कहाँ भी जाती थी या जाते थे फादर्स, साइलेंस में हाथ में माला होती थी और बिल्कुल साइलेंस में घूमने जाते थे। तो बाबा कहते हैं तुम तो सच्चे नंस हो, केवल एक की याद में रहते हो। अभी तो वो कॉन्वेंट स्कूल नहीं रहे, अभी तो जनरल हो गए हैं, अभी बहुत है कॉन्वेंट स्कूल्स, पहले भारत में जब अंग्रेजों का समय था। इस पाप, तो गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल, चित चैन जहां पाए तू वहीं ले चल। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अब किसने सुना, किसने सुना ये गीत? आत्माओं ने सुना। आत्मा को परमात्मा नहीं कहा जा सकता, मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। अच्छा, अभी तुम हो ब्राह्मण, तुमको अभी देवता नहीं कहा जाता है, ब्रह्मा को भी देवता नहीं कहा जा सकता है। भल कहते हैं ब्रह्मा देवताई नमः, विष्णु देवताई नमः, परंतु ब्रह्मा और विष्णु में तो बहुत फर्क है। ब्रह्मा साकारी दुनिया का, विष्णु तो फिर स्वर्ग का, तो फर्क है। बाबा कहते हैं परंतु ब्रह्मा और विष्णु में तो बहुत फर्क है। विष्णु को देवता कहा जाता है, ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते हैं। उनको तो प्रजा पिता ब्रह्मा कहते हैं, प्रजा तो यहाँ है, तो क्यों देवता नहीं कह सकते? क्योंकि वो है ब्राह्मणों का बाप, ब्रह्मा है ब्राह्मणों का बाप, ब्राह्मणों को देवता नहीं कहा जा सकता है। अभी ये बातें कोई मनुष्य मनुष्य को नहीं समझा सकते, भगवान ही समझाते हैं। मनुष्य तो अंधश्रद्धा में जो आता है सो बोल देते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो, रूहानी बाप हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्या क्या पढ़ा रहे हैं? अपने को आत्मा समझना चाहिए, आत्मा का पाठ भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। अहम आत्मा ये शरीर लेती है, अहम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, ये पाठ भगवान हमें अभी पढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसे शरीर मिलता है, शरीर भी तो कर्मों अनुसार ही वैसा ही मिलता है। शरीर से आत्मा अलग हो जाती है तो फिर शरीर से प्यार नहीं रहता है। सचमुच वो जब मनुष्य रूप में आत्मा उसके अंदर है तो उससे प्यार है। अब आत्मा चली गई, डेड बॉडी हो गया, अब डेड बॉडी को क्या प्यार करेंगे? भले कोई करे भी, लेकिन वो तो कुछ भी अनुभव नहीं करेगा वो पार्थिव शरीर। तो इसलिए वो आत्मा से प्यार करते हैं। कैसे आत्मा से प्यार करते हैं? वो डेड बॉडी को तो कहेंगे भाई कब ये अर्थी निकलेगी, कब जाएंगे, अंतिम संस्कार कब करेंगे, वो ही सोचेंगे। पर आत्मा से प्यार है, किस आधार पर कैसे कहेंगे आत्मा से प्यार है? क्योंकि फिर बुलाते हैं उनको, श्राद्ध भी करते हैं, पिंड भरते हैं, बहुत कुछ। तो वो शरीर को याद करके थोड़ी करते, आत्मा को याद करके करते हैं। तो बाबा कहते हैं अहम आत्मा ये शरीर लेती है, अहम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, जैसे जैसे कर्म करते वैसे शरीर मिलता है। अब शरीर से आत्मा अलग हो जाती है तो फिर शरीर से प्यार नहीं रहता, आत्मा से प्यार रहता है। शरीर से प्यार हो तो रख दो, लेकिन रख तो सकते नहीं ना, तो इसलिए शरीर से प्यार हटता जाता है, फिर आत्मा से प्यार रहता है। और जब वो जीवित है तो आत्मा को तो जानते ही नहीं, वो शरीर ही सब कुछ समझते हैं। आत्मा से प्यार रहता है। आत्मा में भी प्यार तब है जबकि आत्मा शरीर में है। आत्मा से भी प्यार तब है जब वो आत्मा शरीर में है। पितरों को मनुष्य बुलाते हैं, शरीर तो उनका खत्म हो गया, फिर भी उनकी आत्मा को याद करते हैं, इसीलिए ब्राह्मण में बुलाते हैं। आगे बहुत करते थे, अभी तो ये रसम वो नहीं रही, इसलिए ब्राह्मण में बुलाते हैं उसकी आत्मा को, कहते हैं फलाने की आत्मा आओ, ये भोजन आकर खाओ। गोया आत्मा में मोह रहता है, परंतु पहले शरीर में मोह था, वो शरीर याद आता था। ऐसे नहीं समझते हैं कि हम आत्मा को बुलाते हैं। जब हम किसी मनुष्य को याद करते हैं तो उस समय ये नहीं याद करते कि इनकी आत्मा को, परंतु वो तो शरीर ही देखते हैं। परंतु फिर जब आत्मा को बुलाते, पितरों को बुलाते हैं, तो भी वो शरीर ही याद रहता है, आत्मा का तो उनको ज्ञान ही नहीं। ऐसे नहीं समझते कि हम आत्मा को बुलाते हैं, वास्तव में आत्मा ही तो सब कुछ करती है। आत्मा में अच्छे व बुरे संस्कार रहते हैं। पहले पहले है देह अभिमान, फिर उनके बाद और विकार आते हैं। देह अभिमान सभी विकारों की जड़ है, तो पहले देह अभिमान आता है, फिर सब विकार आते हैं। सबको मिलाकर कहा जाता है, जब किसी में देह अभिमान है और सारे विकार है तो उसको क्या कहेंगे, विकारी। ये विकारी है, सारे विकार है उसके अंदर, तब कहा जाता है विकारी। जिसमें ये विकार नहीं है उनको कहा जाता है निर्विकारी। ये तो समझते हो बरोबर, भारत में जब देवी देवता थे तो उनमें दैवी गुण थे। इन लक्ष्मी नारायण का है ही देवी देवता धर्म। जो भी सतयुग में थे सबका एक ही धर्म था, देवी देवता धर्म। ऐसे नहीं कहेंगे सिर्फ लक्ष्मी नारायण का था, प्रजा का भी वही धर्म, दास दासियों का भी वही धर्म, सबका एक ही धर्म था, देवी देवता धर्म। तो बाबा कहते हैं इन लक्ष्मी नारायण का है ही देवी देवता धर्म। जैसे क्रिश्चियन धर्म में मेल अथवा फीमेल, सबको क्रिश्चियन ही कहेंगे ना, ये भी कहा जाता है देवी देवता, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। राजा रानी प्रजा सब देवी देवता धर्म के हैं। ये बहुत ऊंच सुख देने वाला धर्म है। कौन सा धर्म बहुत ऊंच सुख देने वाला धर्म है? देवी देवता धर्म। बच्चों ने गीत भी सुना, हाँ, कौन सा गीत था? इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल, चित चैन जहाँ पाए तू वहीं ले चल। तो बाबा कहते हैं बच्चों ने गीत भी सुना, ये आत्मा ने कहा कि बाबा ऐसी जगह ले चलो जहाँ मुझे चैन और शांति हो। अब वो तो है ही सुख धाम और शांति धाम। चैन और शांति हो तो वो तो है ही सुख धाम और शांति धाम। यहाँ बड़े बेचैन हैं, है ना, सारे लोग सब बेचैन हैं, कोई न कोई बात में उनको मूंज है, तकलीफ है, दुख है, तो सब बेचैन है। सतयुग में बेचैनी होती नहीं, आत्मा जानती है। क्या जानती आत्मा? कि बाबा बिगर कोई चैन की दुनिया में ले जा नहीं सकते हैं, इसलिए उस परमात्मा को ही बुलाते हैं कि आओ हमको चैन की दुनिया में ले चलो। तो आत्मा जानती है कि बाबा बिगर कोई चैन की दुनिया में ले जा नहीं सकते हैं। तो बाप कहते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति ये दो सौगाते मैं कल्प कल्प लाता हूँ। ये दो सौगाते हैं सुख और शांति, तो मुक्ति और जीवन मुक्ति ये दो सौगाते मैं कल्प कल्प लाता हूँ। परंतु तुम भूल जाते हो, ड्रामा में भूलना ही है, भूल भुलैया का खेल बन जाता है ना, तो ड्रामा में भूलना है ही है। सब भूल जाए तब तो मैं आऊं। कल्प पहले जो बाबा ने ज्ञान दिया था सब भूल गए, तो सब भूल जाए सब कुछ तभी तो मैं आऊं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, तुमको निश्चय है कि हमने 84 जन्म लिए हैं। जो पूरा ज्ञान नहीं उठाएंगे उनका क्या होगा? जो पूरा ज्ञान उठाएंगे उसका मतलब है वो पूरे 84 जन्म लेंगे, परंतु जो पूरा ज्ञान नहीं उठाएंगे वो पहले नई दुनिया में भी नहीं आएंगे। अब पहले नई दुनिया में भी नहीं आएंगे, त्रेता व त्रेता के अंत में आ जाए। सारा मदार है ही इस पर, हमारे पुरुषार्थ पर, कौन सतयुग में पहले आएगा, कौन बाद में आएगा, कौन त्रेता में आएगा, कौन त्रेता के अंत में आएगा, सारा मदार हमारे पुरुषार्थ पर है। सतयुग में सुख था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अच्छा, इसके अगले जन्म में ये कौन थे? पूर्व जन्म में लक्ष्मी नारायण कौन थे ये किसको भी पता नहीं है। अगले जन्म यानी पूर्व जन्म में ये ब्राह्मण थे। लक्ष्मी नारायण का चित्र जब देखेंगे तो बुद्धि में क्या आता है कि ये पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे। उससे पहले, ब्राह्मण से पहले क्या थे? शूद्र थे। लक्ष्मी नारायण की आत्मा भी पहले शूद्र थी, फिर ब्राह्मण बनी, फिर देवता बनी। उससे पहले शूद्र थे, तो वर्णों पर भी अच्छी रीति तुम समझा सकते हो। अभी तुम समझते हो हम 21 जन्म के लिए चैन पाएंगे। बाबा हमको वो रास्ता बता रहे हैं। हम अभी पतित हैं इसीलिए बेचैन हैं, दुखी हैं। जहाँ चैन हो उसको सुख शांति कहेंगे। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत का ज्ञान है ना पूरा ज्ञान। अभी आदि का भी ज्ञान है, मध्य का भी ज्ञान है, अंत का भी ज्ञान है। समझते हो बरोबर सतयुग में भारत कितना सुखी था। दुख अथवा बेचैनी का नाम ही नहीं था। कितना अंतर अभी की दुनिया और उस सतयुगी दुनिया में, दुख बेचैनी का नाम ही नहीं था। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्ग में जाने लिए। अभी तुम बने हो ईश्वरीय संप्रदाय के, और वो है दुनिया में क्या है? वो आसुरी संप्रदाय के, कहते हैं ना उनको पाप आत्मा। पाप आत्मा अर्थात सब आत्माएं पाप है, पापी है। आत्माएं तो अनेक है, परमात्मा एक है, सब ब्रदर्स हैं। सब परमात्मा तो हो नहीं सकते, सब परमात्मा हो तो सब पिता पिता हो जाए, तो फादरहुड हो जाए। यहाँ तो ब्रदरहुड कहते हैं, तो सब भाई भाई है, पिता एक है। सब तो परमात्मा हो नहीं सकते। इतनी थोड़ी सी बात भी मनुष्यों की बुद्धि में नहीं है। बाबा ने समझाया है ये सारी दुनिया क्या है? बड़ा बेहद का टापू है। टापू क्या होता है? हाँ, टापू बीच में होता है और उनके चारों ओर पानी होता है। तो ये दुनिया सारी क्या है? बड़ा बेहद का टापू है। वो तो छोटे छोटे टापू होते हैं, है ना? धरती छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी होगी, वो कई कितने टापू है, वो छोटे छोटे टापू होते हैं। इस बेहद टापू पर रावण का राज्य है। तो इन बातों को मनुष्य नहीं समझते हैं, वो तो सिर्फ कहानियां सुनाते रहते हैं। हाँ, लंका पर रावण का राज्य था, तो लंका में तो वो भी एक टापू बताते ना, तो उस टापू पर रावण का राज्य था। लेकिन बाबा कहते सारी दुनिया ही टापू है, तीन हिस्सा तो पानी है, एक हिस्सा जमीन है, तो सारी दुनिया ही टापू है। तो बाबा कहते हैं कहानी को ज्ञान, हाँ वो तो सिर्फ कहानियां सुनाते रहते हैं, कहानी को ज्ञान नहीं कहा जाता है। कहानी तो कहानी होती है, एक था राजा एक थी रानी, है ऐसी कहानी होती है, पर उसको ज्ञान थोड़ी कहेंगे। उनसे मनुष्य सदगति को तो पा नहीं सकते, केवल कहानियां सुनाते हैं तो सदगति को थोड़ी पाएंगे कहानियों से। ज्ञान से तो सदगति मिलती है, ज्ञान देने वाला है एक बाप, दूसरा न कोई। भक्तों की भगवान आकर के रक्षा करते हैं, भक्तों का रक्षक केवल एक भगवान ही है। तो भक्तों की भगवान ही आकर रक्षा करते हैं, मनुष्य मनुष्य की रक्षा नहीं कर सकते। हाँ, कैसे करेंगे मनुष्य मनुष्य की रक्षा, अपनी नहीं कर सकते हैं तो दूसरों की क्या रक्षा करेंगे। शिव बाबा सभी बच्चों को वर्षा देते हैं, वो बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। हाँ, और क्या क्या है, बहुत है बाबा के टाइटल्स। वो वकील भी है तो बैरिस्टर भी है, हाँ क्योंकि जमघटों की सजा से छुड़ाने वाला है। वकील क्या करता है, बैरिस्टर वकील क्या करता है, जो उसके क्लाइंट है भले उसने कितना भी अपराध किया हो उसके क्लाइंट ने, लेकिन वकील किया हुआ है तो वकील यही कोशिश करेगा ना कि उसकी जो बड़ी सजा है वो माफ की जाए या हल्की की जाए या सजा से मुक्त कराया जाए, ये वकील का काम होता है। तो बाबा कहते क्योंकि तो बाबा बड़ा वकील है, बड़ा बैरिस्टर है, कैसे, वो जमघटों की सजा से छुड़ाने वाला है। जमघट माना यमदूत, उनकी जो सजा है उनसे छुड़ाने वाला है। सतयुग में कोई भी जेल में नहीं जाएंगे, हाँ जेलों से जेल से छुड़ा देता है बाबा, कोई भी जेल में नहीं जाएंगे। बाप सबको जेल से छुड़ाते हैं, बच्चों की सर्व श्रेष्ठ सब मनोकामनाएं पूरी होती है। तो बाबा रावण क्या करता है, रावण जो पतित जो विकारी मनोकामनाएं वो पूरी करता है, और शिव बाबा जो बाबा कहते हैं सर्वश्रेष्ठ मनोकामनाएं है वो पूरी करता है। तो देखो रावण कौन सी कामनाएं पूरी करता है और शिव बाबा कौन सी कामनाएं पूरी करता है। तो बच्चों की सर्वश्रेष्ठ सब मनोकामनाएं पूरी होती है, रावण द्वारा अशुद्ध कामनाएं पूरी होती है। तो जो अशुद्ध कामना रखने वाले हैं उनकी पूर्ति कैसे होती है, रावण करता है, और शुद्ध कामनाओं की पूर्ति शिव बाबा करते हैं। तो रावण द्वारा अशुद्ध कामनाएं पूरी होती है, बाप द्वारा शुद्ध कामनाएं पूरी होती है। शुद्ध कामना कौन सी होती है, सुख चाहिए, शांति चाहिए, चैन चाहिए, ये शुद्ध कामनाएं। और अशुद्ध कामनाएं विकार चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, इस दुनिया के आकर्षण चाहिए, तो वो अशुद्ध कामनाएं। तो बाप द्वारा शुद्ध कामनाएं पूरी होती है। शुद्ध कामनाएं पूरी होने से तुम सदा सुखी बन जाते हो। वो अशुद्ध कामनाएं उनको पूरी होती है लेकिन उससे कोई सुखी थोड़ी होते हैं, फिर भी कोई न कोई दुख तो लगा ही रहता है। तो बाबा कहते हैं शुद्ध कामनाएं पूरी होने से तुम सदा सुखी बन जाते हो। और अशुद्ध कामना क्या है, पतित विकारी बनना, पतित विकारी बनना ये अशुद्ध कामना है। उनको पतित बनना है, पतित बनना है, बाबा कहते ये उनकी कामना है, तो ये तो रावण पूरी करता है। अब पतित विकारी बनना ये अशुद्ध कामना है। पावन रहने वाले को ब्रह्मचारी कहा जाता है, तुमको भी पवित्र रहना है, पवित्र वन और पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। पतित से पावन एक बाप ही बनाते हैं। साधु संत आदि तो विकार से पैदा होते हैं, वो भी पैदा तो विकार से ही होते हैं ना। देवताओं के लिए ऐसे थोड़ी कहेंगे कि वो विकार से पैदा होते हैं, वहाँ विकार तो होते ही नहीं है, वो है ही पावन दुनिया। लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारी थे, भारत पवित्र था। ये अभी तुम समझते हो भारत पवित्र था, ये अभी तुम समझते हो सचमुच। हाँ, दुनिया वाले थोड़ी समझे कि भारत इतना पवित्र था। हाँ, सुख था, बहुत धन था, इतना कहेंगे, लेकिन पवित्र भी था ये थोड़ी समझते। तो बाबा ही आके बताते हैं, भारत पवित्र था ये अभी तुम समझते हो। सतयुग में प्यूरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी, सब सुखी थे। रावण राज्य जब से हुआ है तो गिरते आए हैं, अभी तो कोई काम के ही नहीं रहे, इतने गिर चुके हैं। बाबा कहते कोई काम के ही नहीं रहे हैं, एकदम कौड़ी मिसल बन गए हैं। कहाँ कौड़ी और कहाँ, बाबा कहते हैं अब फिर हीरे मिसल बाप द्वारा बनते हो। कौड़ी की क्या वैल्यू और हीरे की क्या वैल्यू, कितना अंतर बाबा हम में दिलाते हैं। अब फिर हीरे मिसल बाप द्वारा बनते हो। भारत जब सतयुग था तो हीरे जैसा था, अब तो कौड़ी मिसल भी नहीं है। अपने धर्म का ही किसको पता नहीं है, भारतवासियों को यही नहीं पता है कि वो आदि सनातन देवी देवता धर्म के। अभी सनातन धर्म तो कहते हैं, लेकिन वो देवी देवता धर्म है बाबा कहते हैं, ये उस रूप से नहीं समझते हैं। अपने धर्म का तो किसको पता ही नहीं है, बाप पाप करते रहते हैं, भले सनातन धर्म के कहते लेकिन पाप तो करते रहते हैं ना। वहां तो पाप का नाम नहीं, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो वहां तो कोई भी पाप नहीं करता था। तुम देवी देवता धर्म के नामी ग्रामी हो, देवताओं के ढेर चित्र हैं, और धर्मों में देखेंगे एक ही चित्र रहता है। क्रिश्चियन के पास एक ही क्राइस्ट का चित्र होगा, बौद्धियों के पास एक ही बुद्ध का चित्र होगा। क्रिश्चियन क्राइस्ट को ही याद करते हैं, उनको नंस कहा जाता है। नंस माना सिवाय एक क्राइस्ट के और कोई नहीं, नन बट वन, इसीलिए कहते हैं नन बट वन क्राइस्ट, नन बट वन क्राइस्ट। ब्रह्मचारी रहते हैं वो नंस, ब्रह्मचारी रहती है। तुम भी नंस हो, तुम अपने ग्रस्त व्यवहार में रहते नंस बनती हो, एक ही बाप को याद करती हो, नन बट वन, एक के सिवाय और कोई नहीं, नन बट वन, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। उन्हों की बुद्धि में फिर भी दो आ जाते हैं, एक क्राइस्ट को याद करते हैं, फिर फादर का वो बच्चा था कहते हैं, तो फिर फादर है तो फादर अलग हो गया, वो बच्चा अलग हो गया। क्राइस्ट के लिए भी समझेंगे वो गॉड का बच्चा था, परंतु उनको गॉड की नॉलेज नहीं, गॉड कौन है ये पता नहीं, पर क्राइस्ट का पता है उनको, तो क्राइस्ट को ही याद करते हैं। तुम बच्चों को नॉलेज है, हाँ बाप अलग है और ये धर्म स्थापक अलग है। सारी दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसको परमात्मा की नॉलेज हो। परमात्मा कहाँ रहते हैं, कब आते हैं, उनका क्या पाठ चलता है, ये कोई भी नहीं जानते। भगवान को जानी जानन हार कहते हैं, समझते हैं क्या समझते जानी जानन हार कहने से, वो समझते हैं वो जानी जानन हार है, माना हमारे दिल की बातों को जानते हैं, हमारे अंदर में क्या चल रहा है वो भगवान सब जानते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, बाप कहते मैं नहीं जानता हूँ, मैं क्यों बैठ के ये जानू, सबके अंदर में तो विकार ही घूम रहे हैं, तो यही बैठ के मैं देखूंगा क्या कि क्या क्या सोच रहे हैं। बाबा कहते मैं नहीं जानता, हमको क्या पड़ी है, सबके अंदर क्या चल रहा है मन में वो बैठ के मैं जानू, मुझे क्या पड़ी है। बाबा कहते जो हरेक की दिल को बैठ मैं रीड करूंगा, हम आए ही हैं पतितों को पावन बनाने, भगवान का तो एक ही काम है पतितों को पावन बनाना, न कि एक एक के अंदर में क्या सोच चल रहा है वो बैठ करके वो सुनेंगे और पढ़ेंगे। हम आए ही हैं पतितों को पावन बनाने, अगर कोई पवित्र नहीं रहते हैं, झूठ बोलते हैं, तो नुकसान तो अपने को ही पहुंचाएंगे, बाबा का क्या बिगाड़ेंगे, अपना ही बिगाड़ते हैं, झूठ बोलते हैं, पावन नहीं रहते हैं। गाया भी हुआ है, क्या गायन है, कि देवताओं की सभा में असुर आकर बैठते थे, इंद्र सभा में दिखाते ना, असुर आके बैठा, नर का आकर के बैठा, वह अमृत बांटा जाता था, कोई विकार में जाकर फिर छिप कर आए बैठते हैं तो वो तो असुर हो गए ना। यहाँ सब देवता बनने वाले बैठे हैं, सब पवित्र बैठे हैं, और कोई असुर आके बैठे जो विकारी है, विकारों में जाता है, तो बाबा कहते हैं वो असुर हुआ ना, आपे ही अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। हर एक को अपना अपना पुरुषार्थ करना है, नहीं तो नहीं करेंगे पुरुषार्थ तो क्या होगा, नहीं तो अपना ही सत्यानाश करते हैं। बहुत ऐसे हैं जो छिप कर बैठ जाते हैं, कहते हैं हम विकार में थोड़ी जाते हैं, परंतु विकार में जाते रहते हैं। बाबा को ये तो पता है कि विकार में भी जाते हैं और यहाँ आकर के बैठते और कहते हम नहीं जाते। ये गोया बाबा कहते अपने को ठगते हैं, भगवान को क्या ठगेंगे, भगवान क्यों ये बातें सोचेगा, अपने को ही वो ठगते हैं। विकारी भी रहते हैं फिर बाबा की सभा में भी आके बैठते हैं, वो अपने को ही ठगते हैं, अपना ही सत्यानाश करते हैं। परम पिता परमात्मा जिसका राइट हैंड धर्मराज है, उनके आगे झूठ बोलते हैं तो खुद ही दंड के भागी बन पड़ते हैं। बहुत सेंटर्स में भी ऐसे होते हैं बाबा, अभी बाबा एक मिसाल देते हैं किसी का, तो बाबा जब पहली बार दिल्ली में गया था तो रोज एक आता था, बाबा मुरली चलाते थे तो बाबा वही देखते थे सब कि भाई कोई भी यहाँ भिखारी नहीं बैठे बाबा के सामने, मधुबन में भी कोई आए तो कोई भिखारी नहीं आए, इसलिए फॉर्म भी भरवाते हैं ना सबसे। तो बाबा कहते हैं तो एक आता था, पूछा जाता था, जबकि दिल्ली में गया तो बाबा तो रोज एक आता था और विकार में जाता रहता था, पूछा जाता था जबकि पवित्र नहीं रहते हो तो आते क्यों हो, तो कहता था आऊंगा नहीं तो निर्विकारी कैसे बनूंगा, पवित्रता अच्छी लगती है, वो ये कहता था पवित्रता अच्छी लगती है परंतु रह नहीं सकता हूँ, आखिरी तो सुधर जाऊंगा, यहाँ आता रहूंगा बाबा की मुरली सुनता रहूंगा तो सुधर जाऊंगा, ऐसा कहता था, नहीं आऊंगा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा मेरा, इसीलिए आता रहता हूँ तो एक दिन तो सुधर जाऊंगा, और कोई रास्ता ही नहीं है इसीलिए हमको यहाँ आना पड़ता है, नहीं तो बेड़ा गर्क हो जाएगा हमारा। तो बाप समझाते हैं तुम वायुमंडल खराब करते हो, हंसों की सभा में एक बगुला आकर के बैठे तो वायुमंडल को खराब करते हो। फिर तो कहते हैं बाबा इनके हाथ का खाना भी अच्छा नहीं लगता, बाप ने युक्ति भी बताई है कि खान पान की खिटपिट होती है, अब घर में भी होता है ना खान पान की खिटपिट तो होती है, तो कई कुमार दादी जी से पूछते थे कि मेरे माता पिता हैं तो वो तो लौकिक है, वो तो ज्ञान में नहीं चलते हैं, तो मैं तो अपनी माँ का भी नहीं खाता हूँ, माँ के हाथ का भी नहीं खाता हूँ, वो तो कोई पवित्र थोड़ी रहती होगी। तो दादी से पूछते थे कि माँ बहुत दुखी होती है कि बेटा मेरे हाथ का नहीं खाता है, तो दादी ने उनको परमिशन दी कि हाँ कुमार है और माँ भोजन बनाती है तो भले खाओ, नहीं खाएंगे तो माँ को बहुत दुख होता है, लेकिन बाबा को याद करके खाओ, बहुत मेहनत है, बाबा को याद करके खाओ। कई मिलिट्री वाले आते थे, बाबा को कहते थे हम तो पका नहीं सकते, हमको तो मेस में खाना पड़ता है, तो बाबा उनको भी छुट्टी देते थे कि खाओ भले, परंतु वो जो बाबरची जो वो कुक है खाना पकाने वाला, उनको कहो कि जब छोक लगाती हो तो ये क्या कहते हैं लहसुन प्याज का लगाते हो तो उसके पहले मेरा हटा दो, निकाल के रख दो, फिर भले लहसुन प्याज डालो जिनको आप देते हो, तो वो अलग करके रखते भी थे, लेकिन बाबा की याद में खाओ, फिर बाबा उनको छुट्टी देते थे। तो बाबा कहते हैं खान पान की खिटपिट होती है, ऐसे तो नहीं नौकरी छोड़ देंगे, वो मिलिट्री की नौकरी तो नहीं छोड़ेंगे ना, पर खान पान की खिटपिट होती है, फिर युक्ति से चलाना होता है, कोई को समझाओ तो बिगड़ पड़ते हैं, पवित्र कैसे रहेंगे। हाँ ऐसे कहते हैं, अब ये तो कब सुना नहीं है कि कोई पवित्र भी रहना होता है, सन्यासी भी रह नहीं सकते, अपने परिवार में होते और सन्यासी बन के रही तो हो नहीं सकता, पत्नी सामने है तो छोड़ देते हैं परिवार, पत्नी को ही छोड़ देते हैं, तब समझते हम पवित्र रह सकेंगे। तो बाबा कहते हैं सन्यासी भी रह नहीं सकते, जब घर बार छोड़ जाते हैं तब पवित्र रह सकते हैं, परंतु ये किसको भी पता नहीं है कि यहाँ पतित पावन परमात्मा पढ़ाते हैं, ये किसको पता नहीं है, नहीं मानते इसीलिए विरोध करते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं, कोई शास्त्र दिखाओ पूछते हैं, ब्रह्मा तन में शिव परमात्मा आते कोई शास्त्र दिखाओ, ऐसे कहाँ लिखा हुआ है, ये तो गीता में लिखा हुआ है ना, गीता में है क्या कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में आता हूँ, माना बूढ़ा तन होगा तभी तो बूढ़ा तन का अंत का जन्म का भी अंत में आता हूँ, साधारण तन में आता हूँ ये भी है। तो बाबा कहते हैं तो गीता में लिखा हुआ है मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, वो अपने जन्मों को नहीं जानते, जिसके तन में आता हूँ वो आत्मा अपने जन्मों को नहीं जानते। अब ये तो लिखा हुआ है, फिर तुम कैसे कहते हो कि परमात्मा कैसे मनुष्य तन में आएंगे, गीता में लिखा हुआ है तो कैसे कहते हो, उनको प्रश्न उठता है, तो लिखा ही नहीं है कहीं कि वो कोई मनुष्य तन में आते हैं, पतित तन में ही तो आकर रास्ता बताएंगे ना, आगे भी आए थे और कहा था, कल पहले भी आए थे और कहा था कि माम एकम याद करो, ये गीता के अक्षर है, तो भगवान ने आकर ये कहा था माम एकम याद करो, वही परम धाम में रहते हैं और कहते हैं माम एकम याद करो। श्री कृष्ण का शरीर तो मूल वतन में नहीं होगा, अब कोई कहे श्री कृष्ण ने कहा तो श्री कृष्ण ने तो नहीं कहा होगा, क्योंकि परम धाम में तो श्री कृष्ण कोई शरीर के साथ थोड़ी होगा जो वो आएगा इस सृष्टि पर और कहेगा। श्री कृष्ण का शरीर तो मूल वतन में नहीं होगा जो कहे कि माम एकम याद करो, एक परम पिता परमात्मा ही साधारण तन में प्रवेश कर तुम बच्चों को कहते हैं माम एकम याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे पाप कट जाएंगे, इसलिए ही मुझे पतित पावन कहते हैं, मेरी याद से ही तुम पावन बनेंगे, इसी को योग अग्नि कहते हैं, जिससे तुम पतित से पावन बन जाएंगे, तो मुझे ही पतित पावन कहते हैं। पतित पावन जरूर आत्माओं का ही होगा ना, कोई शरीरों का पतित पावन थोड़ी होगा, आत्माओं का ही पतित पावन होगा ना, पतित भी तो आत्मा ही बनती है। तो बाप कहते हैं तुम पवित्र आत्मा 16 कला संपूर्ण थे, अभी 9 कला, कोई कला ही नहीं रही है पवित्रता की, बिल्कुल ही पतित बन गए हो। मैं कल्प कल्प आकर तुमको समझाता हूँ, तुम जो काम चिता पर बैठ पतित बन जाते हो, फिर ज्ञान चिता पर बिठाकर तुमको पावन बनाता हूँ। पावन कैसे बनाते? ज्ञान चिता पर बिठाकर पावन बनाते। भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। किसको भी चैन नहीं है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग में, किसको भी चैन नहीं है। अब बाप कहते हैं दोनों ज्ञान चिता पर बैठो, स्त्री पुरुष युगल रूप में दोनों ज्ञान चिता पर बैठो। हर आत्मा को अपने अपने कर्मों अनुसार शरीर मिलता है। ये बाबा क्यों कहते हैं हर एक को अपने अपने कर्मों अनुसार शरीर मिलता है? ऐसे नहीं कि दूसरे जन्म में वही पति पत्नी आपस में मिलेंगे। कई समझते ना, सात जन्मों का साथ है, सात जन्म, इस जन्म में पति पत्नी बने हैं तो सात जन्म तक हम पति पत्नी बनेंगे। तो बाबा कहते ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं कि दूसरे जन्म में भी वही पति पत्नी आपस में मिलेंगे, नहीं। इतनी रेस कर न सके, क्योंकि पति का पार्ट अपना पत्नी का पार्ट अपना, तो अगले जन्म में फिर साथ कैसे रहेंगे, कोई जरूरी नहीं है। ये तो पढ़ाई की बात है ना। अज्ञान काल में हो सकता है, चलो अज्ञान काल में हो सकता है, पर ज्ञान काल में पति पत्नी अगले जन्म में फिर पति पत्नी बने, ये नहीं। यहाँ तो ज्ञान की रेस है, दोनों एक जैसे भी नहीं रेस दौड़ेंगे। अज्ञान काल में हो सकता है वो पति पत्नी अगले जन्म में पति पत्नी बने, हो सकता है। आपस में बहुत प्रेम है तो उनकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है कि अगले जन्म में भी वही उसका पति बने। वो तो है ही पतित विकारी मार्ग, पति के पीछे पत्नी चिता पर भी बैठती है। आगे तो बहुत होता था, पति के पीछे पत्नी वो चिता पर कूद जाती थी और वो भी पति के साथ मर जाती थी, सती प्रथा थी। पति के पीछे पत्नी चिता पर बैठती है, दूसरे जन्म में भी जाकर उनसे मिलती है, परंतु दूसरे जन्म में उनको थोड़ी मालूम पड़ेगा। चलो अगर वो दोनों आत्माएं अगले जन्म में भी पति पत्नी बने मान लो, लेकिन दूसरे जन्म में उनको ये थोड़ी पता होगा कि पिछले जन्म में भी हम पति पत्नी थे, कैसे पता होगा। तो दूसरे जन्म में उनको थोड़ी मालूम पड़ेगा। तुम भी अभी देखो बाबा हमसे कैसे भेंट करते हैं, तुम भी बाबा के साथ ज्ञान चिता पर चढ़ते हो। क्या करते हो? हाँ, शिव बाबा या शिव बाबा के साथ या ब्रह्मा बाबा के साथ, तुम भी बाबा के साथ ज्ञान चिता पर चढ़ते हो। ये छी छी शरीर छोड़ चले जाएंगे, तुमको ये अभी मालूम है, उनको तो नहीं मालूम रहता कि हम आगे जन्म में ऐसे साथी थे। अभी हम कहते हैं हम ब्रह्मा बाबा के साथ है, साथ थे, साथ है, साथ रहेंगे, सारा कल्प रहेंगे, हाँ ब्रह्मा बाबा के साथ। शिव बाबा तो परमधाम में ही बैठ जाएंगे और हम इस सृष्टि पर आएंगे ब्रह्मा बाबा के साथ। बाबा कहते हैं उनको तो नहीं रहता कि हम आगे जन्म में ऐसे साथी थे, तुमको भी याद वहाँ ये बातें नहीं रहेगी। अब श्री नारायण बनेंगे ब्रह्मा बाबा, यहाँ तो हमारे अलौकिक पिता है, लेकिन वहाँ थोड़ी ये पता होगा कुछ भी। तुमको भी बाद में वहाँ ये बातें याद नहीं रहेगी, अभी तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है, मम्मा बाबा ही लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो इस संगम पर वो मम्मा बाबा हमारे, फिर अगले जन्म में वही लक्ष्मी नारायण बनेंगे, हम उनकी डिनास्टी में आएंगे। विष्णु है देवता, प्रजापिता ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते हैं, ब्रह्मा सो देवता बनते हैं, हाँ ब्रह्मा सो देवता बनते हैं, ब्रह्मा सो विष्णु, फिर विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, ये अभी तुमने समझ लिया है। हाँ समझा है ना, अभी तुम जानते हो चैन तो सिर्फ स्वर्ग में ही होता है। कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया, वहां स्वर्ग में गया। अच्छा, स्वर्ग गया अर्थात चैन में गया, चैन में गया। बेचैनी में तो पतित रहते हैं, बाप फिर भी कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाकी है डिटेल में समझने की बातें। बाप नॉलेजफुल है तो तुमको भी अपने जैसा नॉलेजफुल बनाएंगे, बाप की याद से तुम सतो प्रधान बनेंगे। ये आत्माओं की रेस है। कौन सी रेस है? शरीरों की रेस नहीं, आत्माओं की रेस है। जो जास्ती याद करेंगे वो जल्दी बनेंगे। ये है योग और पढ़ाई की रेस। स्कूल में भी रेस होती है ना, ढेर स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें से जो नंबर वन निकलते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है। एक ही पढ़ाई लाखों करोड़ों आत्माओं के लिए होती है। हाँ, होती है ना। वो पढ़ाई भी तो कितने स्कूल्स है, कितने कॉलेजेस है, तो कितने बच्चे पढ़ते होंगे। एक ही पढ़ाई लाखों करोड़ों आत्माओं के लिए होती है, तो इतने स्कूल भी तो होंगे ना। अब तुमको ये पढ़ाई पढ़नी है। सबको रास्ता बताओ, अंधों की लाठी बनो, घर घर में पैगाम पहुंचाना है। अंधों की लाठी बनो, घर घर में पैगाम पहुंचाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, अब अशुद्ध कामनाओं का त्याग कर। अशुद्ध कामनाएं कोई भी नहीं रखनी है। अब अशुद्ध कामनाओं का त्याग कर शुद्ध कामनाएं रखनी है। सुख शांति चैन की दुनिया में हम जाएं, ये शुद्ध कामना रखनी है। सबसे शुद्ध कामना है पवित्र बनकर पवित्र दुनिया का मालिक बने। ये सबसे शुद्ध कामना है। कोई भी भूल को छिपाकर अपने आप को ठगना नहीं है। धर्मराज बाप से सदा सच्चा रहना है। दूसरा, ज्ञान चिता पर बैठ इस पढ़ाई में रेस कर, भविष्य नई दुनिया में ऊंच पद पाना है। योग अग्नि से विकर्मों के खाते को दग्ध करना है। वरदान, बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर सदा सम्मुख की अनुभूति करने वाले विजयी रत्न भव। बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर, शिव बाबा हमारा प्रीतम है ना, तो बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर सदा सम्मुख की अनुभूति करने वाले विजयी रत्न भव। प्रीत बुद्धि किसको कहेंगे? प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन एक प्रीतम के साथ लगी हुई हो, उसको कहेंगे प्रीत बुद्धि। जिसकी एक के साथ प्रीत है, उनकी अन्य किसी भी व्यक्ति व वैभव के साथ प्रीत जुट नहीं सकती। वे सदा बाप दादा को अपने सम्मुख अनुभव करेंगे। जिससे प्रीत होती है उसको अपने सम्मुख अनुभव करेंगे। उन्हें मनसा में भी श्रीमत के विपरीत व्यर्थ संकल्प व विकल्प नहीं आ सकते। उनके मुख से व दिल से यही बोल निकलते हैं। हाँ, जिनसे प्रीत है उनके बारे में क्या बोल निकलते हैं मुख से और दिल से? तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सब करूं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं। ऐसे सदा प्रीत बुद्धि रहने वाले ही विजयी रत्न बनते हैं। कौन बनेंगे विजयी रत्न जिनकी ऐसी प्रीत बुद्धि होगी। स्लोगन, चाहिए चाहिए का संकल्प आना भी रॉयल रूप से मांगना है। अंदर में आता है मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए, तो बाबा कई बार कहते चाहिए चाहिए ये चूही बना देता है। चूही छोटी होती है ना, चूहे की तो छोटी होती है, तो चाहिए चाहिए की इच्छा, चाहिए चाहिए का संकल्प आना भी रॉयल रूप में मांगना है। ये अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। संगम युग पर बाप दादा ने सभी बच्चों को पहला व्रत दिया है। कौन सा व्रत दिया है? संपूर्ण पवित्र भव। ये पहला व्रत बाबा ने हम बच्चों को दिया है। ये पवित्रता का व्रत सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं है, लेकिन ये पवित्रता का व्रत केवल ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं है, लेकिन ब्रह्मा बाप समान हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ हो, हर संकल्प में पवित्रता का महत्व हो, हर कर्म में कर्मयोगी जीवन का अनुभव हो, इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी सो ब्रह्माचारी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, अभी बाबा को भोग लगेगा। वैसे तो शशि दीदी आते हैं भोग लगाने, लेकिन उनको बहुत खांसी है तो गला उनका खराब है, वो नहीं आ सकेंगे, इसीलिए हम सब मिल करके बाबा को भोग लगाएंगे।
ओम शांति। एक जरूरी सूचना है, आज शांतिवन में डायमंड हॉल में दादी प्रकाशमणि जी की 19वीं पुण्यतिथि के निमित्त रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। तो जो भी भाई बहने इच्छुक है, रक्तदान करना चाहते हैं, वह डायमंड हॉल में पहुंचे। सवेरे 9 बजे से 1 बजे तक का समय रहता है रक्तदान का, इस बीच में आप रक्तदान कर सकते हैं। और इसके अलावा आने वाली 25 तारीख को जिस दिन दादी जी का पुण्यतिथि का दिवस होता है, उस दिन भी यहाँ ग्लोबल हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। जो लोग यहाँ देना चाहते हैं, समय अनुसार सेट होता है समय, तो यहाँ भी दे सकते हैं, क्योंकि वो दिन होता है सब ज्यादातर ब्राह्मण भाई बहने नीचे जाते हैं, तो कईयों को सेट नहीं हो पाता है, तो आप अपने हिसाब से सेट कीजिए। अगर आपको आज जाके नीचे दे के आना है तो भी दे सकते हैं, 25 को यहाँ देना है उस दिन यहाँ पर भी आप ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। और आदरणीय शीलू दीदी जी ने जैसे हम सभी को बताया, आज किन्हीं कारणों से संदेशी हम सभी के बीच में नहीं है, लेकिन हमेशा आदरणीय शशि दीदी जी पूछते थे कि कौन कौन वतन में चलेगा, तो आज कौन वतन में जाएगा, सबको ही जाना है, हम सभी वतन में जाएंगे दीदी के साथ और बाबा को भोग स्वीकार करेंगे। उसके बाद 5 लाइनों में सभी को अमृत मिलेगा, तो बीच में टीचर्स बहनों की लाइन होगी, इस तरफ 2 लाइन माताओं की होगी, उस तरफ भाइयों की लाइन होगी।
और आप सभी के नाश्ते का जो स्थान है वो ऊपर का बड़ा डाइनिंग हॉल है, वहीं जाकर नाश्ता करेंगे। नीचे से बहुत बहनें आ गई है, जो नीचे से आए हैं शांतिवन से वो हाथ उठाए। देखो इतनी सारी बहनें आ गई है, टीचर्स की बट्टी चल रही है, तो सबका नाश्ता दिन का भोजन बड़े डाइनिंग हॉल में ऊपर में है, और बाकी यहाँ भी बट्टी चल ही रही है। तो हम सब मिलकर बाबा को भोग लगाएंगे, सब वतन में उड़ेंगे, वतन में उड़ करके बाबा से मिलेंगे, बाबा से रूहानी करेंगे, बाबा से शक्ति भरेंगे। चलो
पिता हो, तुम ही हो जग की तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग की तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन,
तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे। तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आ प्रभु संग संग बाबा, यूं ही आ प्रभु संग संग बाबा। इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या। लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में। उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद